कृष्ण के प्रति गोपियों का पहचान मुराद है उससे समझ में पड़ता है, तथा हम लोग कैसे भजन करें इसके समझ में हमने बताया। हमने ये भी बताया गुरु साधकों के हृदय में कृष्ण की सेवा की भावना जो भक्ति करता है उसका वपन करते हैं, और यही श्रवण कीर्तन जलसे शिव जैसे इसके भक्ति करता का विराट आकार धारण करता है, जो इस ब्रह्मांड को घेरकर स्वर्गलोक को घेरकर ब्रह्मलोक को यहाँ तक कि वैकुंठ को भी घेरकर अयोध्या द्वारका मथुरा को भी घेरकर ब्रज में राधा कृष्ण के चरणों का उल्लंघन करता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भजन रहस्य नाम पुस्तक लिखी है छोटी सी, और उसमें कैसे साधन भजन करना चाहिए इसका रहस्य क्या है हम लोगों के लिए बताया। जिन लोगों को फुर्सत नहीं है कर्म से या कर्म ज्ञान निश्चय भक्ति से वो लोग इसमें नहीं प्रवेश कर रहे, उनको समय नहीं, किंतु सच्चे जो साधक हैं उनसे ऊपर उठे और खुद करके इसमें प्रवेश कर तब इसमें प्रवेश कर, उनकी रुचि नहीं जो भजन में प्रवेश कर, और सच्चे साधक सामने राज्य में भी किसी से भी आसक्त नहीं हो, जैसे मछली पानी में अंदर में रहती है कीचड़ में रहती है किंतु न तो कीचड़ और पानी दोनों उसका होता है, कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी पानी से उसका संपर्क होता है, पानी के बिना जी नहीं सकता, पानी में भी रहेगा किंतु उसमें पानी का बूंद देने से इधर उधर, उसी प्रकार से जो सच्चे साधक हैं जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं वो लोग भी इस संसारी कर्म ज्ञान निष्ठा भक्ति में औपाधिक भक्ति में गुना गुणीकुता भक्ति में लोग प्रवेश करने की चेष्टा कैसे उनके लिए आठ ज्ञान है, जैसे हमारे भक्ति में स्मरण पद्धति में आठ ज्ञान है वैसे भजन में भी आठ ज्ञान है, जैसे निष्ठानंद लीला प्रातः काल में लीला कुर्बान में लीला मध्यान्ह में लीला अपराह में लीला सायंकालीन लीला प्रदोष लीला और मध्यरात्रि लीला, ये कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हैं, साधक इनका समय समय पर प्रतिदिन जिस समय कृष्ण की जो लीला होती है, जैसे अभी 12 बजे कृष्ण कांड में गोवर्धन में कुसुम सरोवर के निकट गई हूँ, क्या कर रहे हैं वो चार लीला, और सखाओं को छोड़ दिया सुबह लगभग मधुमंगल को साथ लेकर के राधा को नमस्कार की तरफ नहीं आया। जब सवेरा हुआ तो सवेरे क्या कर रहे हैं? ये सब जो कृष्ण भाव नाम है गोविंद लीला में श्रीमद् भागवत हमारे गोसाई ग्रंथ में जो दिया गया उच्च कोटि के महाभागवत साधक लोग जिनको भाव लाए और प्रेम चाहते हैं ऐसे लोग इसका उद्देश्य रखना है तो इसके लिए साधनों के लिए ये तो हुआ उत्तम भागवतों के और निम्न में जो साधक है इसमें जो इंद्रियों से साधन कर रहे हैं और ये मन और आत्मा के द्वारा साधन करना इनके लिए संभव नहीं है। अभी कर्म मार्ग से निकल करके आ रहे हैं ज्ञान मार्ग इन लोगों के लिए निशांत एक है भजन का निशान वो क्या है जैसे निशा का अंत का भाव भोरंत कारक नहीं है सूर्य उगने को है किंतु एक घंटा विलंब है एक घंटा
24 मिनट
कितना मिनट
36 मिनट
उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उस समय तारे आकाश में झिल जाने से अब बंद हो जाते हैं चंद्र भी कम दिखता है तारे भी नहीं दिखते प्रकाश थोड़ा थोड़ा आ जाता थोड़ा थोड़ा अंधकार भी है। इसलिए उस भजन का वो समय क्या है क्यों श्रद्धा है उस समय अनर्थ है शरीर में अहम का भाव है और सारे जितने भी अनर्थ हैं, कौन अनर्थ हृदय
सर्वभ्रम
में कृष्ण का स्वरूप आत्मा का स्वरूप भक्ति का स्वरूप माया का स्वरूप असत कृष्ण भक्ति का तरह तरह की असत कृष्णाएं होंगी जब कृष्णा होगा तो हृदय दुर्बल हो जाएगा तो हृदय दुर्बल से अपराध जैसे कि हम लोग समय में वर्तमान उसमें कंट्रोल नहीं कर सके इसलिए श्रद्धा तो भी है साधुओं के संग में घर भी छोड़ दिया लाल कपड़े भी नहीं गले में माला भी किंतु अभी अंधकार में आए भाई अभी आने वाली है किंतु अभी अंधकार है अभी श्रद्धा तक अनर्थ पूरे भरे पड़े संसारी आसक्तियां हैं तरह तरह की काम है उसको कहते हैं वो भजन के लिए निशान है इस समय के लिए हमें उचित है अपराध क्या है अनर्थ क्या क्या है भजन में बात हम कैसे उनको पार कर सकते हैं इसलिए उस समय का नाम शुद्ध नाम नहीं है नाम शुद्ध तब हुआ जब भाव अवस्था आएगी तब इसके पहले नहीं इसलिए उस समय बहुत तरह के अनर्थ यहाँ तक ये भी अनर्थ है भजन करते करते चारों तत्व में प्रसिद्धि आएगी रुपये पैसे आने लगे लोग सम्मान खूब करने लगे जो कुछ चाहोगे वो मिल जाए ओ हम तो भजन में सिद्ध हो गए और उस समय अपनी चरण भूमि देना अपना प्रसाद देना और आचार के फल बेचना ये सब उसको विरापतित कर देना इसलिए ये सब चीजों को समझना चाहिए जो कर
ओम ज्ञान तमर
सिंह
Maharaj is saying that yesterday he has explained how gopis have got their deep love for Krishna. And also he has explained that in this context, how should we also cultivate our bhajan. Now Maharaj is saying that Guru tells to his disciples, to sadhak, that how bhajan should be done. In fact, Guru sows the seed of Shraddha in the heart of his disciple in sadhak. This seed is nothing but desire to serve Krishna, Krishna seva ki vasana. The moment he sows this seed in the heart of the devotee, at that time this creeper starts coming up. Creeper from the seed of Shraddha, from the seed of desire to serve Krishna, it comes up and it goes up and up. Maharaj is explaining it goes beyond Swarg, heavenly planet, then Brahmlok, then goes beyond Vaikuntha, even Ayodhya and Dwarka. It crosses Mathura also, and in Vrindavan it takes shelter of lotus feet of Radha and Krishna. This all thing has been explained in Bhajan Ras by Srila Bhaktivinoda Thakur. How a true devotee, true sadhak should do his bhajan. Maharaj is explaining that they cannot be cultivated by those people who are engaged in the activities and they say they don't have time. The people feeling lack of time cannot cultivate this type of bhakti. If there is any attachment, one cannot cultivate this type of pure bhakti. When creeper is there, it requires to grow, it requires to give water also into it. Maharaj said, we have to become free from attachment, just as a fish, though inside water and even in dirt, but it remains away from that water. Water does not disturb it. And he gave the example of lotus. Lotus flower though exists because of water, but it is away from water. Similarly, living in this world, if one does not have any attachment, only then this bhakti can be cultivated. Karam upadhi guna bhuta bhakti chhodni padegi, Maharaj says. We have to give up all the bhakti, so-called bhakti, where we are doing bhakti because by our activities and by some designation. We have to give up such type of so-called bhakti. Just as there is 8 periods in the whole 24 hours and there is Krishna Leela accordingly. Similarly, Srila Bhaktivinoda Thakur says that in a person of a devotee who is sadhak, there are 8 steps of devotion in which he has got 8 different stages. Nishan. Maharaji is saying, let us see, it is 12 o'clock. Those who are perfect, those who are Uttam Bhagavat, they always contemplate and meditate upon Krishna's Leela according to these ayam. It is 12 o'clock, what Krishna will be doing? Maharaj is informing us this secret. Right now Krishna will be, he is for Gocharan Leela. And this is time from at this time, he is sneaking with his friends, taking Subal and Madhu Mangal with him, and he is going to find out where will be Radha Rani, either at Radha Kund or Suraj Kund. So, these are the meditating points of Uttam Bhakt, but sadhak cannot do this thing. But one thing should be clear in all those devotees, that we have to come to this stage. This is our target. If we don't fix up our target, it will not do. But when we are sadhak, what should we do? Sadhak means, the first step Sadhak Maharaj is saying, it is called Shraddha. Right now he is cultivating through his senses only. He is cultivating bhakti through his senses only. It is very difficult to contemplate on leelas. But in the life of new five devotees, Sadhak, Nishant period comes. It is not Nishant Leela, it is Nishant Leela. It is Nishant period. Nishant means when sun is not there, but light has come. That may be called dawn. In English, the word is probably dawn. Sun is not there. It is Brahm Murat, just 1 hour and 36 minutes before rising of sun. What happens? Stars also nearly disappear, and light also goes. Light comes, but darkness stays also. Both things are there. Though light comes, but some darkness is also there. What is this? Maharaj is explaining. What is this light? Small Shraddha has come in our heart, but still darkness is there. What is darkness? Aparadh and anarth are darkness. What are those anarth? Anarth. These anarths are, number one, Swarup Brahm. Swarup Brahm means we are not aware of our own form, our own self. We are not aware of Krishna's form. That is Supreme Personality of Godhead's form. We are not aware of the form of bhakti by which we should cultivate bhakti. We are not aware of sadhi and sadhan, that how should, what is our ultimate goal and how should we cultivate. Also we don't have any exact idea of maya. So this is called Swarup Brahm. Because of this Swarup Brahm, Maharaj was saying, we have got Asat Krishna. Asat Krishna means our desire for unwanted things, material things, asat things, which are not permanent, which are perishable. Why this asat Krishna? Why this such lust comes? Because of Swarup Brahm. And when there is unwanted desires, these unwanted desires will compel us to commit aparadh. So these things are existing in us. We have given up our house. We have accepted diksha. We have even accepted clothes. But still only Shraddha is there and all these anarths are there. We have to concentrate how they will have to go. This is the Nishant period.
Shraddha ko humne bataya Nishant. श्रद्धा किसको कहते हैं? शास्त्रों में भगवान के वचनों में वैष्णव और गुरु के वचन में दृढ़ श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा मैंने क्या प्राण जाने पर भी मैं उनके वचनों के विरुद्ध नहीं करूंगा जो कुछ कहते हैं हम उसको पूरा विश्वास है नहीं करूंगा विश्वास का शब्द का है सुतिर निश्चय कृष्ण भक्ति करने कृष्ण का हमारा जो कुछ कर्म है वो सब कुछ करना हो गया है इस दृढ़ विश्वास का नाम शास्त्र यही कहते हैं गुरु जी यही कहते हैं यदि आपने सब कुछ गलत का कर लिया और कृष्ण का भजन नहीं किया तो जोर देखा यदि आपने कुछ भी नहीं किया किंतु भगवान का भजन कर दिया तो सब कुछ था ऐसे विश्वास जिसको हो जाएगा वो भक्ति में प्रवेश करेगा इसका उद्देश्य साधु संत और शास्त्र क्या बतलाते हैं सबसे पहले देखो तुम जल बाण के चक्कर में पड़े हुए कोटि कोटि जन्मों से कोटि बार तुम मनुष्य हुआ कोटि बार देवता इत्यादि फिर उसी चक्कर में 30 जन्म को पा करके तुम भगवान नाम विशेष करके कल्पित नाम में भगवान की जय जितनी भी शक्ति में है नाम हुआ का सत्ता है जो भगवान का और उससे भी अधिक करेगा पापों की शक्ति में ही जितना पाप कर सके इतना नाम में शक्ति है जो पाप को देख सकते तात्पर्य ये पापी में पाप करने की उतनी शक्ति नहीं है जितना भगवान में पाप को दूर करने की शक्ति है। उसकी सारी शक्ति को समाप्त कर देने पाप करने की शक्ति को भी वो जैसे आदि में मत होते अजामिल वाल्मीकि जगाई मधाई इत्यादि ऐसे पात्र थे जिसकी कोई पूजा नहीं, किंतु भगवान का नाम करने के साथ में ऐसी शक्ति आई सारे पापों को छोड़ दिया सदा के लिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो यदि भगवान का नाम उच्चारण करता है तो भगवान की सारी शक्तियां उस पर और उसे पवन ये विश्वास है। कोटि कोटि यज्ञ कोटि कोटि अस्पताल स्कूल बनाना शिक्षा का बनाना उसके अपेक्षा एक आदमी की चित्त वृत्ति को भगवान के तरफ बनाना ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं जिसने जन्म जन्मांतरों में अनेक जन्मों तक भगवान बाप देव की अर्चना की उन लोगों को भगवान के नाम में रुचि होती है। उन लोगों के लिए आवश्यक नहीं है कि फिर अर्चन करे जाए। क्या कहा जिन लोगों ने हजारों जन्मों तक भगवान का अर्चन किया कनिष्ठ अधिकार वाला और इस जन्म में देखा कि भगवान का अर्चन नहीं कर रहा है और नाम कर रहा है नाम में पूर्ण निष्ठा है नाम को भगवान से भी अधिक समझता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि फिर से अर्चन अर्चन कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है ये इच्छा के ऊपर है।
बहुत सारे
लोग अर्चन से बहुत ऊपर चला गया इसको श्रद्धा हो गई इसके कनिष्ठ श्रद्धा जिसको उत्पन्न हो गई वो भी कनिष्ठ अधिकारी से उन्नत कर्मी जोगी इत्यादि से भी ऊपर है जो भगवान का नाम है। यदि दीक्षा भी नहीं मिलता है और हे नाम के तभी ऊपर और यदि श्रद्धा हो गई तो शास्त्र कहते हैं मैं भी कर उसके बिना भी तुम्हारा नाम वो शुद्ध नहीं है। इसलिए गुरु की बात मान करके अब दूसरे में आया साधु संघ में अलग ये प्रातः काल गुरु से हरिनाम दीक्षा लेकर शुद्ध रूप में अनर्थों को दूर करते हुए जो भजन किया जाता है ये दूसरा हुआ। क्या धीरे धीरे जब अनर्थ दूर हो जाएगा और हरिनाम करने लगेगा श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करने लग जाएगा तो ये तृतीय हो जाएगा। क्या निष्ठा निष्ठा के साथ में संबंध ज्ञान के स्वरूप में नाम करता है तो इससे ऊपर चौथा जज अनर्थ काफी उत्तर और निष्ठा बदल करके हो गई रुचि और उसको कहना नहीं पड़ता है आज तुमने हरिनाम किया कि नहीं कहने की जरूरत है आज तुमने शास्त्र देखा कि नहीं आज तुमने अर्चन किया कि नहीं कोई अब कहने की जरूरत नहीं है उसको नाम में रुचि हो गई सेवा में रुचि हो गई और उसका एक लक्षण है हरि कथा में नींद नहीं आती। यदि सब कुछ होते हुए भी हरि कथा में नींद आती है तो समझो जैसे उसको श्रद्धा भी ऊपर नहीं है कभी निशांत भजन भी उसका इसलिए जो जो लोग सो रहे हैं तो समझे कि भक्ति में अभी प्रवेश द्वार में अभी श्रद्धा में भी नहीं हो उनको भक्ति की रुचि और इसको क्या है इससे भी बढ़ करके जब उसकी रुचि निष्ठा से पढ़कर के रुचि और रुचि से आसक्ति हो गई उसको कोई थोड़ा सा नाम करने में गड़बड़ करेगा बाधा देगा भगवान का चिंतन करने में बाधा देगा साथ साथ धैर्य से मना करेगा तो उसको चीड़ हो जाएगी उसका चित्त खराब हो जाएगा कोई अपमान करने से उसका चित्त खराब नहीं होगा कोई उसका विषय ले लेगा तो मन नहीं खराब होगा कैसे मन खराब होगा यदि कोई भगवान के भजन में उसको बाधा देता है, हरिनाम करने में गड़बड़ कीर्तन करने शास्त्र अनुशीलन में कोई बाधा देता है, तो उसमें जाए उसको दुष्संग ज्ञान का शिष्य उसे समझ नहीं, उसे ऊपर आसक्ति, आसक्ति से ऊपर में तब
उस समय में शुद्ध भजन हो सकेगा, वो भावावस्था
और इसके बाद में तब दिखते हैं। इस तरह से ये इसकी सात श्रेणियां है, आठ, ये आठों नियम में हम विशेष रूप से एक एक को लेकर के आगे से इसका हम बतलाएंगे, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ करके पालन करने की चेष्टा करें। बोले बोले
मैं उसको कर दिला आर्ट लग
रहा, ये बोल देने से
का तो महाराज जी इज एक्सप्लेनिंग दैट श्रद्धा इज इन निशांत लीला, देन व्हाट इज श्रद्धा, ही इज एक्सप्लेनिंग आवर फर्म बिलीफ इन द स्टेटमेंट ऑफ स्क्रिप्चर्स इन गुरु वैष्णव दैट इज कॉल्ड श्रद्धा. When belief becomes so much strong that I will believe only what my Gurudev says, what scripture says, even my life goes, I don't mind for it, then means Shraddha is there. Shraddha shabd vishwash kahe, sudrana nishchay, Krishna bhakti kele, sarvkarm krit hai. When I am doing Krishna's, I am doing some service for Krishna, my all is completed. When one has very strong faith in this statement, this means Shraddha is coming. He is not caring at all any material duty, but he is too much careful for his seva for Krishna. What scripture says? He is having full faith. Scripture says that we have been taking birth since time immemorial. Now we have got human being life, and especially in Kali Yuga, the chanting of name is very, very potent thing. We have firm faith in this thing. The chanting of name and bhakti is so much potent that it can rectify any amount of sinful activities. A sinner cannot commit that much of sin as the name can purify it. Examples are before us, like Ajamil, like Bahbalmiki, Jagai Madai. Maharaj is giving these examples that we can see the potency of name. We have firm faith in this thing that they were purified by the strength of name only. Therefore, if anyone takes the name of Lord, then Krishna himself gives his potency, bestows his potency, instills his potency in us, and that potency, that all qualities of Krishna, they remove our all sinful reactions in, from us. This is the strength of name. Maharaj was explaining that if we even construct millions of hospitals, it will not do anything. If we just convert 1% into Krishna consciousness, it is the highest activity, greatest activity. One thing Maharaj today, it appeared as if he has given to us as his benevolent nature, very interesting. He was saying, by this statement of scripture, if one has cultivated Shraddha in his heart, that he has becoming faith in name, chanting name, and he is not doing archan, he is very glorified person, because in Kanishtha Adhikari, if a person has done archan of Lord since ages together, only then this Shraddha comes. Maharaj has stated one statement, two things. Kanishth Shraddha and Kanishth Adhikar. Kanishth Shraddha means a belief that name is so much powerful. If this belief, this Shraddha comes, then it is more powerful, millions times more powerful than Kanishth Adhikar. In that Kanishth Adhikar, one is generally engaged in doing archana only. So if a person is dedicating himself for Hari Nam only, he and not doing archana, that means he has already done archan in many, many, many his life. So there is no harm in it. Only those who are situated in Kanishth Adhikari, they have got orientation towards Archan only. So whoever generated this Kanishth Shraddha, means very nominal start of Shraddha in his heart towards name, he is most fortunate and he is above Kanishth Adhikari. So from Nishant we enter into morning, from dawn to morning, Pratakal. What is this? Now he accepts a Guru and he is chanting and trying to remove his anartha and adopting the prasati by taking initiation. Then when it becomes more strong and anartha removes to some extent, then Nistha comes. What does in Nistha comes? Then he starts doing chanting with Sambandh Gyan, with the knowledge of his relationship with Lord. And when he starts doing this thing, as a result, anartha starts removing fast. When anartha goes, then some taste starts coming to him. That is called ruchi. When anartha goes, then taste comes. What is the symptom that ruchi is coming? Maharaj is saying, he will have, one has not to ask him, please chant. He will chant automatically. And the another point Maharaj was saying, that when he is listening Harikatha, because of dedication for that Harikatha, he will not sleep in class. So any person who sleeps in class, that means he has not come to the stage of Ruchi, he is still not entering into even Nishant Leela also, Nishant time also. So when taste becomes more and more strong, then Asakti comes. Maharaj was saying, in Asakti, one is so much absorbed in chanting, so much absorbed in reading all this Vedas of Krishna, that any hindrance comes in his this activity, he becomes disturbed. And he can give up anything which hinders him in his this cultivation. He does not mind at all anyone if anyone takes his any material thing. But if a person disturbs him in his this activity, he is very much concerned and he leaves that person without any hesitation. This is the symbol of Asakti. From Asakti, one enters into Bhav. In the stage of Bhav, one does Shuddh Bhakti and then Prem. So these are the steps.
Abhi samay ho gaya hai, isliye abhi bhogakti hogi. Karuna par Karunavati, aur Karunavati ke baad mein परिक्रमा होकर के अपने प्रसाद की व्यवस्था. आप लोग कोई भी मध्याह्न विशेष करके हमारे मथुरा से जो अभी आए हैं गुप्ता जी और उनके साथी लोग और सब लज्जा की कोई बात नहीं, इससे बड़े सौभाग्य की बात. इसलिए आप सभी का प्रसाद प्राप्त करके सब जाए. अभी दो राशि आप लोग आ रहे
हैं.
आरती आरती
आरती कर दी. हाँ जी, ये रैग.
हरे कृष्णा. Evening program will be there as it is from 6 to 7.
Shampoo, 6 to 7.
6 to 7.